ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज हम श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 29 श्लोक 37 से पढ़ रहा है। भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। रूपभेदा अस्पदम दिव्यम कालम इति अभिधीयते भूतानां महत आदीनां यथा दीनदृशां भायां। रूपाभेदास्पदं देव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशं वयम्। रूपाभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशं वयम्। रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशं वयम्। अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है वो काल से भयभीत रहता है। तात्पर्य, हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि काल भगवान का दूसरा स्वरूप है उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता। रूप भेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहता है। उदाहरणार्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु कालक्रम से वो ये रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा यह भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। असामान्यतया हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि यह काल का प्रभाव है। जो व्यक्ति या ना जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है उसके लिए काल भय का कारण है। रूपभेदास्पदं दिव्यां काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशं भयम्। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है वो काल से भयभीत रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान है, मूल रूप है, सबके मूल रूप है, उनसे सब कुछ आ जाता है। अलग अलग भगवान की मूर्ति है, ये सब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के विस्तार रूप है। और भौतिक आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है। और जीवात्मा भी है, शक्ति तत्व है, मूल शक्ति श्रीमती रानी है, और विभिन्नांश तत्व है, जीवात्मा है, तो सब भगवान से आया है, भगवान के दूसरे रूप है। और यहां पर इस काल के बारे में बताता है, काल भी भगवान के अन्य स्वरूप है। काल ओस्मी, कृष्ण खुद भगवद गीता में कहता है कालोस्मी, काल अस्मी, हम ये काल है जो सनातन है, जो अनंत है। और तो इस अध्याय में तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं देवती अपने पुत्र से भक्ति के बारे में। और वास्तव में क्योंकि तो भक्ति मार्ग में आगे जाना है, तो इसी समय भी इस काल के बारे में पूछती थी, तो इसलिए इसमें यहां पर उत्तर देता है भगवान कपिल देव। लेकिन सबसे पहले तो भक्ति के बारे में बताता है कि तीन प्रकार के भक्ति है, जो शुद्ध वस्त्र पहनाई है, तो तीन गुण में है जो भक्त, तो कभी कभी तो भक्ति मिश्रित हो जाता है, तो ये गुण के अनुसार। और इसलिए इस अध्याय में बताया है कपिल देव ने कि तो भक्ति कभी कभी तमगुण से प्रभावित है। तो वास्तव में भक्ति, शुद्ध भक्ति निर्मल है, आध्यात्मिक तो वस्तु तो है भक्ति, भगवान भक्ति और भक्ता तो शुद्ध है। लेकिन जब शुद्ध वस्तु में नए है, जिससे सदक शरीर में है, जब शुद्ध वस्तु में नए है, तो इस कारण से भक्ति भी मिश्रित हो जाती है। तो कभी कभी तमगुण के अंदर भी है, भक्ति कर रहा है भक्त लोग, कभी कभी रजगुण से प्रभावित है, और कभी कभी सत्वगुण में है। लेकिन इस शुरुआत में बताता है ये कपिल देव ने कि जो भक्ति जो हमको करना है, ये शुद्ध सत्व के वस्त्र पर होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, तीन गुण से परे होना चाहिए, ज्ञान कर्म से निर्मल, तो से इसके ऊपर होना चाहिए। ज्ञान मिश्र भक्ति भी है, कर्म मिश्र भक्ति भी है, लेकिन हमको शुद्ध वास्ता पर पहुंचना है। तो इसके लिए तो बताता है कि तो पुरुषोत्तम अहैतुकी अव्यारहिता का भक्ति पुरुषोत्तम के प्रति हमको कहना चाहिए, अहैतुकी तो शुद्ध भाव से तक भगवान की पुरुषोत्तम की सेवा करना चाहिए। इसके बाद बताता है कि ठाकुर जी की सेवा के माध्यम से हम आगे जा सकता है, लेकिन पहले भी बताता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ठाकुर जी की सेवा करता है लेकिन ठीक से दूसरे के साथ नहीं रहता है, ये कनिष्ठ अधिकारी है। जिससे श्रीमद भागवतम में भी 11वें स्कंद में ये नव योगेंद्र किंग राजनिमि को बताता है कि तीन प्रकार के भक्त है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो अगर कोई ठाकुर जी की सेवा करता है लेकिन अच्छी तरह से दूसरे के साथ नहीं रहता है, ये तो कनिष्ठ अधिकारी है भगवान की अच्छे विग्रह की सेवा करते हुए भी। इसके बाद बताता है कि वास्तव में हमको तो भगवान की सेवा करना चाहिए, अच्छे विग्रह की सेवा करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रूप गोस्वामी पाद भी बताता है, चौसाद भक्ति के अंग है। सबसे पहले गुरुपाद आश्रय, गुरु की कृपा के बिना आगे जाना तो संभव नहीं है, क्योंकि आदेश अनुसार सदन भजन करना है और जब उनकी कृपा मिलता है तो हम आगे जा सकता है। और इसके बाद बताते क्या करना है क्या ना करना है, नवविध भक्ति। और इसके बाद पंच महत्वपूर्ण अंग है, तो इसमें भी तो नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद तो भगवत श्रवण भी बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि अगर हम रोज रोज नहीं सुनता है भगवान के बारे में तो अच्छे तरह से उनके चिंतन नहीं कर सकता है। जब अच्छे तरह से उनके चिंतन नहीं कर सकता है तो अच्छे तरह से भजन सेवा नहीं कर सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ अंग है नाम कीर्तन, युग धर्म है महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये शुद्ध भाव से करता है और भगवान के बारे में सुनता है रोज रोज, और जब ठाकुर जी की सेवा करता है तो हम आगे जा सकता है। और इसमें भी बताता है कि जब ठाकुर जी की सेवा करता है और जब हर के दिल में, अपने दिल में भी और दूसरे के दिल में जब भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकता है, उसी समय हम अच्छे तरह से भक्ति लाइन में, भक्ति मार्ग में रहते हुए आगे जा सकता है। तो अपना भगवान जो दिल में है का स्वरूप तो अनुभव करना है। एक तत्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि कृष्णा जो आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, उनके नित्य सिद्ध परिकर के साथ आध्यात्मिक जगत में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और अच्छा विग्रह, जिस हमारे मंदिर में भी राधे श्याम है विराजमान है, और अपने दिल जो स्थित राधे श्याम अभिनय है, और जब शुद्ध नाम को चरण करता है उसी समय भी राधे श्याम प्रकट हो जाता है, तो हम उस वस्त्र पार पहुंचना ही है। ये उत्तम भक्ति है जब भगवान का स्वरूप का अनुभव कर सकता है। लेकिन तुरंत उत्तम वस्त्र पार पहुंचना तो आसान नहीं है, तो क्रम से हमको आगे जाना है। जैसे अगर कोई सोचता है कि जैसे बच्चा है तो विद्यालय में जाता है तो पहले तो कोई चिंता नहीं करता है क्या बाद में क्या क्या होंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेल में भी सोचता है हम डॉक्टर बनाएंगे, हम वकील बनाएंगे और हम जो भी कुछ बनाएंगे होंगे, तो इसके लिए तो हमको विद्यालय जाना है और आगे जाना है। तो क्रम से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी ऐसे करते हुए दसम तक पहुंचता है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स, इसके बाद ग्यारहवा बारहवा श्रेणी, इसके बाद फिर से एग्जाम्स होते, इसके बाद विश्व कॉलेज में, विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद बन जाता है डॉक्टर, वकील, जो भी है अध्यापक। तो क्रम से हमको आगे जाना है, वैसे ही भक्ति मार्ग में क्रम से हमको आगे जाना है। तो इसलिए यहां पर भी क्रम से बताता है कि कैसे आगे जाना है, अलग अलग अवस्था बताता है। और जैसे भक्ति रसमृत सिंध में भी रूप गोस्वामी पाद उन्होंने लिखा है कि भक्ति का अलग अलग अवस्था है, तो हमको देखना है कि हम आगे जा सकता है। तो ऐसे करते हुए हम अच्छे तरह से सब कुछ देख सकता है, वास्तविक वास्तु, वास्तव वास्तु कृष्णा और भौतिक जगत, और उसी समय भी अनुभव कर सकता है कि कृष्णा और उनके अलग अलग जो विस्तार रूप है, और जैसे भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और काल भी एक साथ ही भगवान से अभिन्न है लेकिन भिन्न भी है। अभिन्न भेद अभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने प्रकट किया है, उन्होंने बताया है कि मूल रूप तो भगवान श्री कृष्ण है या श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसके बाद तो दूसरे रूप जो है ये भी अभिन्न है लेकिन भिन्न भी है। ये हमको अच्छे तरह से मालूम होना चाहिए, और जब अच्छे तरह से साधन भजन करता है तो इसका अनुभव भी कर सकता है। तो श्लोक में तो बताता है और प्रभुपाद तत्पर्य में बताता है, रूपा रूप भेद रूप के परिवर्तन का। और इस भौतिक जगत में हम देखता है कि उदाहरण देता है यहां पर श्रील प्रभुपाद के, जिससे मनुष्य के पुरुष हो स्त्री हो तो सबसे पहले बच्चे के रूप में है, इसके बाद तरुण अवस्था में पहुंचता है, इसके बाद युवावस्था तो, और इसके बाद वृद्धावस्था में भी पहुंचता है। तो लेकिन सबको तो मालूम है कि एक ही पुरुष है, लेकिन फिर भी ये भी देखता है कि शरीर बदल जाता है काल के प्रभाव से। और यहां पर बताता है कि जो भौतिक जगत में है जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में है, और दूसरे भी सब भयभीत रहता है, पशु पक्षी भी हमेशा भयभीत रहता है दूसरे से। जैसे हम देखता है यहां पर भी तो पशु पक्षी कुछ देखते हैं प्रसाद, यहां पर ब्रज में भी देखता है, लेकिन इधर उधर देखता है भयभीत रहकर, बिली ना आ जाए और हमको कहेंगे, तो इस भाई से तो रहता है हमेशा, दूसरे से भयभीत तो रहता है, तो वैसे ही सब भयभीत रहता है। तो मनुष्य शरीर में भी जीवात्मा जब भगवान को उनकी पूजा नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, तो भयभीत रहता है। तो कोई ज्यादा भयभीत रहता है, कोई कम भयभीत रहता है, लेकिन फिर भी जब भौतिक जगत में है जीवात्मा और भगवान को नहीं मानता है तो भयभीत ही रहता है। क्योंकि और अंत में भी मृत्यु के समय भी सबको मालूम है मृत्यु तो जरूर आएगा, और उसी समय तो शरीर छोड़ना है, इसके लिए भी भयभीत रहता है, शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद क्या होगा नहीं मालूम है, इसलिए भयभीत रहता है। लेकिन भक्त जो भगवान को मानता है, भगवान की सेवा करता है, ये बिना भय भगवान की सेवा कर सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, सनातन है, आनंदमय स्वरूप है। तो वैसे ही हम भगवान के अंश, भगवान के दास है, तो हमारे भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भी सनातन है। इसलिए वे जब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, करता है, उसी समय बिना भाई तो सेवा कर सकता है, उनकी कोई भाई नहीं है। लेकिन फिर भी जब इस भौतिक जगत में रहता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो बहुत सारे संकेत भी है, बहुत सारे समस्या आ जाता है, कभी कभी भक्त लोग भी भयभीत हो जाता है, लेकिन ये तो क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि अलग अलग तो भाव है, अलग अलग तो आध्यात्मिक जगत में ये भी शास्त्र में लिखा है, जैसे भक्ति रसमृत सिंधु में और उज्ज्वल नीलमानी की अलग अलग भाव है। एक भाव तो स्थायी भाव है जो भक्त के पास, जो भगवान की सेवा करता है, जो आगे है, उनको मालूम है हम कृष्ण के दास है और उनकी स्थायी भाव है, उन्होंने अली भाव किया है कि हम कृष्णा के दोस्त है, कृष्ण के माता या पिता है, ये स्थायी भाव है। जब मालूम है कि हमारे नित्य संबंध कृष्ण के साथ क्या है, स्थायी भाव ये हमेशा के लिए रहता है। लेकिन जब आगे नहीं है उसी समय तो स्थायी भाव तो स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त के पास तो ज्ञान है हम भगवान के दास है, इसलिए बिना भाई भी आगे जा सकता है। लेकिन ये भी लिखा है कि अलग अलग संचारी भाव है, तो इसमें भी जैसे आनंद है, सुख है, दुख है, आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक दुख है, उदास, उदासीन भी हो जाता है और भयभीत भी हो जाता है, लेकिन कृष्णा केंद्र में है, इसलिए वास्तविक तो भाई तो ये नहीं है, तो मतलब वास्तविक भी है, आध्यात्मिक है, लेकिन ज्यादा चिंतन करना जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये अलग अलग भाव है, इसलिए इस भौतिक जगत में अलग अलग भाव है। लेकिन ये है कि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण केंद्र में है और सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहा है भक्त लोग, और सदग अवस्था पे भी उनको मालूम है कृष्ण हमारे इष्ट देव है और हमको सब कुछ कृष्ण के लिए करना ही है, इसलिए ये भक्त लोग सेवा करता है बिना भाई, लेकिन कभी कभी भाई भी प्रकट हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन भक्त को मालूम है ये सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन वास्तविक चिंतन नहीं है। लेकिन मान लीजिए जैसे नित्य लीला में भी है, कभी कभी भयभीत हो जाता है उनकी शुद्ध वैष्णव, और प्रकट लीला में भी जब कृष्ण यहां पर थे और चेतन महाप्रभु भी यहां पर थे, तो उसी समय जब महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर प्रचार करने के लिए दूसरे उद्धार करने के हेतु चले गए थे, उसी समय ये भक्त लोग भयभीत थे, हमको आशा है कि कुछ नहीं होगा महाप्रभु को, उनको मालूम था कि कृष्णा चैतन्य भगवान ही है तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस भाव ये भाव आ जाता है कभी कभी। और जैसे भक्त के भी अगर गृहस्थ आश्रम में भी है तो उसी समय उनके बच्चा है, और जब छोटे बच्चा है तो उसी समय तो छोटा बच्चा मां से पूछता है, माँ हम अभी बाहर जाएंगे खेलेंगे दूसरे बच्चे के साथ, ठीक है जाओ, लेकिन उसी समय भी थोड़ा सा भयभीत रहती है, हम आशा कि कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, ये भी जानते हुए कि हम कृष्ण के दास है, शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भय कभी रहती है, ये स्वाभाविक है। और जब विद्यालय में जाना है तो बस आ जाता है, बस में जाना है, और उसी समय भी सोचती है माँ, विशेष करके माँ को, पिताजी तो सेवा में लीन है तो ज्यादा चिंतन उनके नहीं है, लेकिन माँ के पास ज्यादा चिंतन है, और सोचती हमेशा आशा है कि कुछ नहीं होगा बेटे को या लड़की को बेटी को, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब कृष्ण केंद्र में है तो ये सहन कर सकता है, और उनको मालूम है कि वास्तव में कुछ नहीं होगा। तो लेकिन जो भगवान को नहीं मानता है उनके पास, क्योंकि कृष्ण केंद्र में नहीं है, इसलिए जो भौतिक अवस्था में है और उनके भौतिक भाव है, भौतिक सुख है, भौतिक दुख है और भौतिक भाई है। तो उनके पास बहुत भाई है और इसलिए तो अपने रक्षा के लिए भी सब व्यवस्था करता है। घर पे दो तीन ताला है अंदर से, और इसके बाद दीवार भी है, और कभी कभी इलेक्ट्रिक वायर भी लगाता है, और चौकीदार भी रखता है, बहुत कुछ करता है, भयभीत रहता है। लेकिन वक्त भी अपना रक्षा करने के लिए परिवार के भी उनके पास भी ताला है, लेकिन ज्यादा भयभीत नहीं रहता है, क्योंकि मालूम कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता है ये भी भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन फिर भी जब गृहस्थ आश्रम में है उसी समय भी अपना जीवन का रक्षा भी करना है, परिवार के भी तो उसे देखभाल करना है। तो भाई भी है, लेकिन जब कृष्ण केंद्र में है ज्यादा भाई नहीं है, वह सहन करता है और मालूम है आता है और जाता है, या अलग अलग भाव तो सहन कर सकता है। लेकिन दूसरे जो भौतिक जगत में है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, और उनके ज्यादा भाई है। तो सबसे पहले जिनके पास पैसे नहीं है तो भयभीत रहता है, पैसे नहीं है कैसे पैसे मिलेंगे, क्या खाएंगे आज, और तो कुछ पैसे मिलते हैं इसके बाद सोचते ज्यादा पैसे नहीं और पैसे चाहिए है, तो चिंतित है भी, चिंतित रहता है कैसे और पैसे मिल सकता है। और दूसरे भी जो अच्छे तरह से कमाता है पैसे, करोड़पति बन जाता है, लेकिन फिर भी उनके भाई है, क्या सोचते अब ये मेरे पास 1 करोड़ है क्या पर रख दू, तो बैंक में डालता है तो बहुत टैक्स देने पड़ता है, तो ठीक है तो छुपा के रखता है, लेकिन फिर भी घर पे रखता है तो भाई पीट भी रहता है, अगर चोरा था तो क्या करेंगे, क्या होगा, तो स्विट्जरलैंड में बैंक में रखता है और यहां पे तो रूस अभी सब ठीक है तो बच लिया। तो सरकार से, लेकिन आजकल भी तो सरकार और दूसरे लोग भी तो शिकायत करता है, तो स्विस बैंक में बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग के पैसे है, सारे पूरे विश्व के लोग पैसे डालते हैं स्विस बैंक में, क्योंकि वहां पर कोई जो खाता जो है इसमें कोई नाम नहीं है, सिर्फ नंबर है और किसी को नहीं मालूम है कि किसका खाता है। यहाँ पर आप देख सकता है तो बैंक में भी तो कभी कभी तो खाता का किताब है और सब देख सकता है, ये दूसरे के किताब में भी देख सकता है, विशेष करके यहाँ पर SBI बैंक में। और अगर कोई पूछता है दूसरे के पास पैसे है तो थोड़ा सा पैसे देते हुए कुछ पता भी चल सकता है। और जब सरकार है ये तो सरकार लोग आ जाता है तो देख सकता है किसके पास कितना पैसा है। लेकिन वहां पर भी सरकार भी अभी तक अभी तो कोशिश कर रहा है दिखाने के लिए, अभी तक तो सरकार भी उनको भी नहीं मालूम है किसका है, सिर्फ जो अध्यक्ष जो है बैंक के उनको मालूम है कि किसके पैसा है, सिर्फ नंबर है और कितना पैसा इसमें ये भी किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ अध्यक्ष और एक और वाइस प्रेसिडेंट उनको मालूम है। लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तानी जो वहां पर उनके पास पैसा है ये भी डरता है, अभी वहां पर पैसा है लेकिन सरकार भी हमारे पीछे तो पड़ेंगे, तो सब भयभीत रहता है। तो जब इस भौतिक जगत में है, सिर्फ भक्ता जो भगवान की सेवा करता है तो बिना भय रह सकता है, और कभी कभी आ जाता है भाई है लेकिन सहन कर सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कृष्ण के नित्य दास है और हमको उनकी सेवा करना है। अलग अलग जो भाव जाता है ये फिर से चले जाता है, और कभी कभी तो दुखित भी हो जाता है भक्त लोग, हम अच्छे तरह से आगे ना जा सकता है, लेकिन फिर भी हमको मालूम होना चाहिए कि हम आगे जाता है भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, और हमको हमेशा तत्त कर्म प्रवर्तनत उच्च निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनत संगत त्यागे सतो वृत्ते सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यते च जब हम उत्सव के साथ निष्ठ के साथ दायरे भाव में हम हमेशा भगवान की सेवा जब हम लीन है और ये जो कर्मी लोग अगर हम उनसे दूर रहता है और सदसंग में है तो हमारी भक्ति सिद्ध हो जाती कुछ समय के बाद, लेकिन धैर्य भी होना चाहिए। कुछ समय तो लगेगा उत्तम अवस्था पर पहुंचना, तो एक साल में नहीं होगा। शुरुआत में जब आ जाते भक्त लोग तो सोचते हैं हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है भक्ति मार्ग में, तो पांच साल के बाद ब्रह्मचारी सोचते हैं अभी पांच साल के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे, लेकिन भजन भजन करता है देखता है तो मन और इंद्रिय वश में रखना मुश्किल है, तो और इसी समय भी सोचते हैं तो ब्रह्मचर्य रहेंगे या गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। हाँ, तो मन और इंद्रिय वश में रखना मुश्किल है और इसलिए भी कभी कभी भयभीत रहते हैं क्या करूं कैसे आगे जाएंगे, लेकिन हमको उत्साह के साथ निष्ठ के साथ धैर्य भाव के साथ हमको आगे जाना है और सहन करना चाहिए। जो कुछ जो अनर्थ जो है अपने दिल में और जो समस्या जो आ जाता है, लेकिन समस्या का हाल भी है ये भी तो भगवान की कृपा से, तो हर समस्या का हाल भी है, तो हमको सिर्फ आगे जाना है, लेकिन शुद्ध वैष्णव के संग में रहना बहुत महत्वपूर्ण है जो आगे है। बिना संग के शुद्ध वैष्णव के आगे जाना तो मुश्किल है, इसलिए प्रभुपाद ने ये संस्था स्थापित किया है जिससे हम वैष्णव के संग से आगे जा सकता है, और ऐसे करते हुए हम तो अच्छे तरह से आगे जा सकता है। तो भक्त के लिए तो समय हमेशा शुभ है, शुभ समय है और अभी तो सबसे शुभ समय है आ गया है पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम क्षेत्र वृंदावन धाम में है और लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर की सेवा की मौका भी हमने मिला है, तो सब भगवान की सेवा यहाँ पर अच्छे तरह से कर सकता है। ऐसे ना है कि सिर्फ पुजारी ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, नहीं, सब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। जब मंगल आरती में जाता है तो उनके लिए तो गाता है सब, तो ये भी सेवा है भगवान के सामने गाना है। इसके बाद तो जैसे अभी पुरुषोत्तमा सब भक्त लोग शाम को दीप दान देता है, तो ये भी सेवा है दीप दान, और अलग अलग अस्तक का उच्चारण करता है ये भी सेवा है, और मन से भी सेवा कर सकता है, या कुछ कभी कभी जब गृहस्थ आश्रम में है तो कुछ भगवान को भी भोग अर्पण कर सकता है, या तुलसी माला या फूल माला अर्पण कर सकता है। तो यह हमारे सौभाग्य है कि यहाँ पर ब्रज में पुरुषोत्तम मास में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा श्याम सुंदर की सेवा कर सकता है, हमारा बहुत बड़ी सौभाग्य है। तो हमको चेष्टा करना चाहिए जिससे हम तो समय तो बहुत शुभ है, और जब अच्छे तरह से शरण भजन करता है बिना अपराध, बिना वैष्णव अपराध सेवा अपराध दाम अपराध जब सेवा करता है तो बहुत जल्दी आगे जा सकता है। तो ये हमारे सौभाग्य है, तो उसी समय कोई भाई नहीं है तो भक्त के लिए, तो हमारे तो हरे कृष्णा यहाँ पर समाप्त कर रहा हूं। अभी दो तीन मिनट है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न है, सब स्पष्ट है, सब ठीक है, सब आनंद में है, परम आनंद में है, कृष्ण की सेवा में लीन है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ जो अलग अलग भक्त लोग अलग अलग व्रत का पालन करता है, तो कोई है जो कोई निमा जो कोई मिठाई नहीं लेता है, तो अभी तो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई तपस्या करता है ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण है ज्यादा जप करना और अष्टक का उच्चारण करना और ज्यादा सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरे जो प्रसाद लेता है, सब कुछ लेता है, मिठाई भी लेता है, यहाँ पर मिठाई कुछ महाप्रसाद ग्रहण कर सकता है। और जैसे तो शास्त्र में लिखा है, अगर जप करता है कार्तिक ये वृंदावन है, तो दूसरी जगह से 1000 और गुण इसका फल मिलता है। और जब कार्तिक मास में जप करता है या तपस्या करता है, 1000 और फल मिलता है। और पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से 16 बार और फल मिलता है। तो जब उसी समय जैसे कोई व्रत करते, अच्छी बात है, जज जप करते है अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नियमित रूप से विनम्र भाव से महाप्रसाद का ग्रहण करता है, इसका भी ज्यादा फल मिलता है। तो जो प्रसाद मिलता है, अभी प्रसाद महाप्रसाद मिल सकता है और इसका और फल मिल सकता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गौणिताय की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की, समवेद भक्त वृंद की, लील पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की, पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम व्रत की, महाप्रसादम की, हरे कृष्णा।